भागवत सार की श्रृंखला में आज चौथे स्कंद पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पहला अध्याय पहले श्लोक को पढ़ेंगे। कृपया दोहराइए। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्त्रह कन्याश्च जग्गिरे आकूर्ति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्त्रह कन्याश्च जग्गिरे आकूर्तिर्देवहूतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुताः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्त्रह कन्याश्च जग्गिरे आकूर्तिर्देवहूतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुताः। मैत्रेय उवाच मैत्रेय मुनि ने कहा मनः तु स्वयंभू मनु का शतरूपायां उनकी पत्नी शतरूपा से तिस्त्रह तीन कन्याश्च कन्याएं भी जगीरे जन्म लिया आकुति ही आकुति नामक देवहूति ही देवहूति नामक च तथा प्रसूति ही प्रसूति नामक इति इस प्रकार विश्रुता विख्यात। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री मैत्रेय ने कहा स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा से तीन कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम आकुति देवहूति तथा प्रसूति थे। तात्पर्य सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ जिनके आदेश से मैं श्रीमद् भागवत के भक्ति वेदांत भाष्य के लेखन की ओर उन्मुख हुआ हूँ जो अपने आप में एक महान कार्य है। उनकी कृपा से तीन स्कंद समाप्त हो चुके हैं और मैं चौथे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं छहों गोस्वामियों को और तब दिव्य युगल राधा तथा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोपों एवं ब्रजभूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा की गई गौण सृष्टि का वर्णन हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृष्टि करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके वासियों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और मनु जैसी अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनकों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, जो परमेश्वर के आदेश से निरंतर कार्यशील रहते हैं। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों तथा उनके वंशजों का वर्णन है। अगले 6 अध्यायों में राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उसके विध्वंस किए जाने का वर्णन है। तत्पश्चात 5 अध्यायों में महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन हुआ है। फिर अगले 11 अध्यायों में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य 8 अध्यायों में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, स्वयंभू मनु के 3 कन्याएं थीं जिनके नाम थे आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। इन 3 पुत्रियों में से देवहूति का वृत्तांत उनके पति कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र कपिल मुनि के समेत पहले ही दिया जा चुका है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकुति के वंश के विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु मनु का विशेष उल्लेख सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इस श्लोक में 6 शब्द भी आया है जो यह सूचित करता है कि स्वयंभू मनु के इन 3 पुत्रियों के अतिरिक्त 2 पुत्र और भी थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस 4th स्कंद को प्रारंभ करने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराकर सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करेंगे कि शक्ति प्रदान करें ताकि इस पर कुछ चर्चा हो सके।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाईन अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारुत्कंठयोस्फुरा।
हरे कृष्णा। तो ये जो चौथा स्कंद है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, विसर्ग का वर्णन करता है। भागवतम के 10 विषय जो दूसरे स्कंद में कहे गए, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्थया, तो हर एक विषय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अब इसमें विसर्ग का वर्णन होगा, फिर आगे के जैसे जैसे हम लोग स्कंदों पर चर्चा करते जाएंगे भागवत के अन्य विषय भी आएंगे। साथ ही साथ प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी समझा रहे हैं कि कैसे ये पूरा स्कंद बटा हुआ है। दक्ष की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, पृथु महाराज की कथा, प्रचेताओं की कथा, तो ऐसे पूरा स्कंद बटा हुआ है। वैसे ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भगवान का स्वरूप है। इसके पहले दो स्कंद भगवान के चरण कमल कहलाते हैं। जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे आगे, हमें ये भी जान लेना चाहिए। तो पहले दो स्कंद ये भगवान के चरण कमल कहलाते हैं, तीसरा और चौथा स्कंद ये भगवान के जंघाओं को सूचित करता है। जब हम भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं तो विग्रहों के दर्शन हमें नीचे से करने चाहिए। सबसे पहले चरण कमल, फिर जंघाओं को, फिर नाभि को, फिर उनके वक्षस्थल को, फिर उनके हाथों को, फिर उनके गर्दन को, और उसके बाद फिर उनके मुख पर जाते हैं और फिर उनके मस्तक और सिर पर। और ऐसे ही ये भागवत है। तो भागवत को पढ़ने की विधि ये है कि हम पहले स्कंद से, चरणों से प्रारंभ करें। तो पहला दूसरा स्कंद चरण है, तीसरे चौथे स्कंद भगवान की जंघाएं हैं, और फिर पांचवा स्कंद ये भगवान की नाभि है, छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, सात और आठवां स्कंद ये भगवान के हाथ हैं, भगवान के दोनों हाथ, और फिर नौवां स्कंद भगवान की गर्दन है, दसवां स्कंद सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान का मुखारविंद है, और फिर ग्यारहवां स्कंद भगवान का मस्तक, और बारहवां उनका सिर है। तो ऐसे ये श्रीमद् भागवत का पूर्ण रूप से विभाग करके हम भगवान के रूप को देख सकते हैं। तो अब तक हम भगवान के चरणों के दर्शन कर चुके हैं, भगवान की जंघा का दर्शन अब हो रहा है। तो जब ये स्कंद समाप्त होगा तब हम लोग भगवान की नाभि का दर्शन करेंगे। तो ऐसे ये अब भागवत के चौथे स्कंद का वर्णन हो रहा है, पहला अध्याय, जिसमें मनु की तीन पुत्रियों का वर्णन पहले ही श्लोक में किया। तो मनु की तीन पुत्रियां और दो पुत्र हुए, इनका वर्णन आगे होगा दो पुत्रों के वंशजों का, और मनु की तीन पुत्रियों के वंशजों का भी वर्णन होगा। तो पहले इस स्कंद के पहले तीसरे स्कंद में 21वें अध्याय में एक प्रश्न हुआ था। विदुर ने प्रश्न किया स्वयंभू मनु के विषय में कि बताइए स्वयंभू मनु ने क्या किया, कैसे सृष्टि की रचना की, आगे कैसे प्रजनन किया। तो उसको कहते हुए उन्होंने उनकी तीन पुत्रियों का वर्णन किया और फिर विदुर ने प्रश्न कर लिया माता देवहूति के विषय में और फिर कपिल देव का आविर्भाव इत्यादि चर्चा हम लोग कर चुके। तो अब देवहूति की चर्चा समाप्त करके अब मैत्री मुनि अन्य पुत्रियों का भी वर्णन करना चाहेंगे, क्योंकि स्वयंभू मनु के पूरे परिवार का कैसे उन्होंने प्रजनन किया ये पूछना था, प्रश्न था। तो इसीलिए अब वर्णन कर रहे हैं उनकी अन्य दो पुत्रियों का। और जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस अध्याय में प्रमुखतः आकुति, तीन पुत्रियां थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का वर्णन हुआ, आकुति का इस अध्याय में होगा और फिर प्रसूति का आगे होगा। तो आकुति के परिवार का वर्णन करते हुए वर्णन करते हैं कि स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह रुचि नाम के ऋषि से किया और उन्होंने एक शर्त रखी विवाह के समय। ये अन्य अन्य प्रथाएं हैं और इन प्रथाओं को मनु संहिता में अन्य शास्त्रों में अनुमोदित किया गया है कि ये प्रथाएं ठीक हैं। तो एक प्रथा होती है कि जब कोई पिता जिसके पुत्र नहीं होते हैं वो अपनी पुत्री का विवाह करते हैं और पुत्री का विवाह करते हुए एक शर्त रखते हैं कि आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, अर्थात उनकी पुत्री और उसके पति से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको आप मुझे पुत्र के रूप में दे दोगे। तो ये शर्त कभी कभी रखी जाती है, ऐसे कई उदाहरण हम लोग शास्त्रों में देख चुके हैं। लेकिन यहां पर तो स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे और फिर भी जब उन्होंने आकुति का विवाह रुचि ऋषि से किया तो उन्होंने ये शर्त रखी कि आपका जो पुत्र होगा वो आप मुझे दे देंगे, वो मेरे पुत्र के रूप में रहेगा। तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि किसी के पुत्र हो, वो भी एक नहीं दो पुत्र, और फिर भी वो कहे कि मैं आपको अपनी पुत्री दे रहा हूं लेकिन आपका जो पुत्र होगा वो आपको मुझे देना है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं इसका कारण ये है। क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मनु जानते थे कि जो रुचि और आकुति से पुत्र उत्पन्न होगा वो भगवान के अवतार होंगे, वो भगवान का अंश होंगे और इसीलिए वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जो भी आपके पुत्र होंगे आप मुझे दे देना। तो आकुति और रुचि के एक पुत्र और एक पुत्री हुए। तो पुत्र थे भगवान के अवतार जिनका नाम था यज्ञ। तो वो आकुति से प्रकट हुए और फिर एक पुत्री भी हुई जिसका नाम था दक्षिणा। तो उस समय जो रुचि ऋषि थे उन्होंने अपने वचन को पूरा करते हुए यज्ञ अर्थात भगवान स्वयं भगवान को उन्होंने दे दिया। दरअसल ऐसा वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं कि स्वयंभू मनु थोड़ी चिंता में थे कि अगर एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ तो शायद रुचि ऋषि देंगे नहीं, क्योंकि स्वाभाविक होता है ना, पहले तो व्यक्ति वचन दे देता है लेकिन पुत्र उत्पन्न होने के बाद आसक्ति हो जाती है, फिर देना नहीं चाहता है। लेकिन जब एक पुत्र और एक पुत्री हुए तो फिर स्वयंभू मनु बड़े खुश हो गए कि कोई बात नहीं, पुत्री तो हुई ना, तो पुत्री आप रखिए, पुत्र मुझे दे दीजिए। और रुचि ऋषि ने ऐसा ही किया, यज्ञ को दे दिया और अपनी पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। और सुंदर उपदेश हम सबके लिए इनमें है, इन भागवत की कथाओं में, कि कैसे व्यक्ति को अपने वचनों पर हमेशा अटल रहना चाहिए। हालांकि भगवान प्रकट हुए, लोग तो कामना करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए पुत्र के रूप में। यहां भगवान प्रकट हुए लेकिन फिर भी अपने वचन की पूर्ति के लिए उन्होंने जाकर उन्हें दे दिया। इसीलिए पहले समय में लोग अपने वचनों के द्वारा जाने जाते थे, जैसे वसुदेव। हम सब जानते हैं कि जब कंस देवकी के विवाह के समय रथ को चला रहा था, हांक रहा था कि मैं अपनी बहन को लेके जाऊंगा, बड़ा प्रेम दिखला रहा था, और उस समय जब आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, इसी देवकी का आठवां पुत्र तेरी हत्या करेगा। वैसे कभी कभी प्रश्न आता है कि क्या जरूरत थी आकाशवाणी करने की, है ना? अरे आराम से चले जाते, आठवां पुत्र होता मार तो वैसे भी मारते, अगर आकाशवाणी नहीं भी करते तो क्या भगवान नहीं मारते? कंस तो वैसे भी मरता, भगवान वैसे भी प्रकट हो जाते, तो क्या जरूरत थी आकाशवाणी करा के बेकार में इतना कष्ट देने की? क्योंकि देवता सोच रहे थे कि अगर हम बताएंगे नहीं कंस को तो कंस सेवा करेगा वसुदेव की, और वसुदेव की सेवा करेगा तो भगवान सोचेंगे मेरे भक्त की सेवा की, अब मैं मारूंगा नहीं इसे, और मारेंगे नहीं तो हमारा क्या होगा। इसीलिए देवताओं ने आकाशवाणी करा दी कि बताओ बताओ इसको। तो जहां भी हम देखते हैं कि जब ऐसा होने लगा कि वो सेवा करने लगा कंस, तो तुरंत देवताओं ने कहा नहीं नहीं इसको दूर हटाओ। इसका अर्थ क्या है कि भगवान के भक्तों की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है कि देवता भी घबराते हैं कि एक अगर असुर भी भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा कर लेगा तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए घबरा कर उन्होंने आकाशवाणी करा दी कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो सेवा, क्योंकि रथ चला रहा है, सेवा हो गई वसुदेव और देवकी की, उनकी सेवा कर दी उसने, तो ये सेवा नहीं करने देना इसको। तो तुरंत आकाशवाणी कर दी, और उस समय जब कंस ने तलवार निकाल ली देवकी को मारने के लिए कि आठवां पुत्र तो छोड़ो, एक भी पुत्र नहीं होने दूंगा, और उस समय वसुदेव जी ने वचन दिया। वसुदेव जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि मेरे जो पुत्र होंगे वो मैं तुमको लाकर दे दूंगा। वैसे एक बात यह भी कही जाती है कि वसुदेव ने वो पुत्र नहीं दिया आठवां पुत्र, उसको तो वो गोकुल ले गए, तो फिर उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा था मैं सारे पुत्रों को तुमको लाकर दे दूंगा, लेकिन वो एक पुत्र को लाकर नहीं दिया, तो क्या झूठे हो गए वसुदेव जी? नहीं, जब वसुदेव ने वचन दिया, हम अगर संस्कृत के उस श्लोक को पढ़ें तो वसुदेव जी कहते हैं कि जिन पुत्रों से तुम्हें भय नहीं है उनको मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। बड़ी चतुराई से वो शब्द कहे गए, पढ़ने में ऐसा लगता है कि जिन पुत्रों से तुम्हें भय है, जिन तुमको तो पुत्रों से भय है ना, मैं तुम्हें लाके दे दूंगा, लेकिन संस्कृत में संधि विच्छेद अगर ठीक से किया जाए तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। दरअसल वसुदेव जी कह रहे थे कि बाकी सारे पुत्रों को तुम्हें दूंगा, लेकिन जिससे भय है तुम्हें उसको तो मैं गोकुल लेके जाऊंगा। तो कंस ने विश्वास कर लिया ऐसे असुर ने वसुदेव जी का, वसुदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा पुत्र, चिंता मत करो, और उसने विश्वास कर लिया। देखिए कंस जैसा असुर, अपनी मृत्यु की बात थी उसकी, कैसे विश्वास कर सकता था? लेकिन वसुदेव जी का चरित्र ऐसा था, हर कोई जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर जिस समय युद्ध हुआ और जब घोषणा करने लगा भीम अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, द्रोणाचार्य किसी और के पास नहीं गए, कृष्ण के पास भी नहीं गए, कृष्ण थे वहां पर कृष्ण के पास नहीं गए द्रोणाचार्य जी कि उनको पूछो जाकर कि क्या ये सत्य है, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण तो खैर कहना नहीं चाहिए। तो द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर के पास गए, तुम बताओ, और कृष्ण ने कहा था युधिष्ठिर से कि तुम्हारे पास आएंगे, कि कृष्ण जानते थे मेरे पास नहीं आएंगे क्योंकि मैं तो अपने वचन तोड़ देता हूं। इसीलिए भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कौन्तेय प्रतिज्ञानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, तुम जाके घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो मानो अर्जुन ने पूछा भाई आप क्यों नहीं घोषणा कर देते, आप ही घोषणा कर दीजिए। बोले नहीं मैं तो कभी कभी अपने शब्द अपने वचन बदल देता हूं,
लेकिन भक्तों के कहे हुए वचन को मैं कभी नहीं बदलता, उसके लिए तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे तो द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर के पास गए, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। और ये जानते हुए कि उनका पुत्र चिरंजीवी है, जब उन्होंने युधिष्ठिर के मुख से सुना अश्वत्थामा हता, आगे नहीं सुन पाए नरो वा कुंजरो वा, लेकिन जब ये सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि युधिष्ठिर ने कहा है तो अश्वत्थामा मारा गया। कुछ भी हो सकता है लेकिन युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता। तो देखिए ये चरित्र होना चाहिए व्यक्ति का। व्यक्ति अपने चरित्र से जाना जाता है। आजकल तो कलयुग बड़ा है, कलयुग में व्यक्ति धन से, प्रतिष्ठा से, या कितनी उसके पास शक्ति है, कितने उसके अनुयायी हैं, कितना वो लोगों को बनाकर रख रहा है अपनी पार्टी में, बस उससे जाना जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता ये नहीं है। वैदिक सभ्यता में भले एक ही व्यक्ति हो, उसके कोई अनुयायी नहीं हो, उसने कोई अपना दल नहीं बनाया हो, कोई पार्टी नहीं बनाई हो इलेक्शन के लिए, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा है तो लोग उसका पालन करते थे। तो वसुदेव जी, युधिष्ठिर, कितने उदाहरण हैं सत्य के। और यहां हम लोग देखते हैं कि रुचि ने अपने वचन का पालन करते हुए उनको दे दिया। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमें चरित्र को बहुत महत्व देना चाहिए। हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। तो इसीलिए ऐसे रुचि ने अब अपने पुत्र को दे दिया और यज्ञ को प्राप्त किया स्वयंभू मनु ने। और ऐसे आगे फिर वर्णन करने लगे कि दक्षिणा से उनके पुत्र हुए। फिर आगे उन्होंने वर्णन किया देवहूति की पुत्रियों का। तो हमने सुना था कि देवहूति, इन पिछले अध्याय में देवहूति की 9 पुत्रियां हुई थी। तो फिर वो वर्णन करने लगे मैत्रेय मुनि कि देवहूति की जो 9 पुत्रियां थी उनके विवाह हुए अलग अलग ऋषियों से, और उनसे कौन उत्पन्न हुए। ये पूरा अध्याय जैसे हम तात्पर्य शीर्षक देख रहे हैं मनु की पुत्रियों की वंशावली, तो ये अध्याय वही बताएगा कि कैसे इनके पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए। अब एक प्रश्न आता है, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, 2 दिन तो 1-1.5 दिन निकल गया होगा, ज्यादा समय तो नहीं था उनके पास। अब उस समय में सुखदेव गोस्वामी उनको भागवत का सार या केवल कृष्ण की कथा सुनाने से ज्यादा ये सब सुना रहे हैं। वो तो सुनाएंगे, ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये भी सुना रहे हैं कि अरे किसकी पुत्री क्या हुई, किसका पुत्र कहां हुआ, किसने क्या किया, अब ये इसकी क्या आवश्यकता है। अरे उन्हें तो शुद्ध बस बताना चाहिए था केवल कृष्ण कथा, तो ये सब की क्या आवश्यकता है कि उनकी 9 पुत्रियां हुई, उनका एक का विवाह इससे हुआ, फिर उसका संतान हुई, फिर दूसरी का विवाह इससे हुआ, उसकी संतान हुई, क्या आवश्यकता थी? क्या सीधे सीधे नहीं बता सकते थे कृष्ण कथा? इसके कई कारण हैं। पहला कारण, ये जो कथाएं हैं जिनका नाम भागवत में आ गया वो महान लोग हैं, भले ही असुर क्यों ना हो। जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु हैं असुर, लेकिन दरअसल कौन है? भगवान के महान भक्त जय और विजय। तो जिनका नाम भागवत में आया है वो बड़े महान लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए उनके विषय में सुनकर भी जीव शुद्ध हो जाता है। दूसरा कारण, सुखदेव गोस्वामी केवल परीक्षित महाराज के लिए भागवत नहीं कह रहे थे। अगर उनके लिए कहते तो कई चीजों को हम देखते हैं, जैसे कलयुग का वर्णन उन्होंने भागवत में किया, क्या आवश्यकता थी परीक्षित महाराज को कलयुग का वर्णन करने की? परीक्षित महाराज तो जाने वाले हैं, 7 दिन में कलयुग तो नहीं आएगा, तो कलयुग में क्या क्या होगा, आगे कैसे होगा, ये सब बताने की क्या आवश्यकता थी सुखदेव गोस्वामी को? वो बस उनके जीवन का बताते, लेकिन आवश्यकता थी क्योंकि ये ग्रंथ उन्होंने केवल परीक्षित महाराज के लिए नहीं, हम सब के लिए दिया है, आगे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए दिया है। और इसीलिए ये सब वर्णन है कि जान लीजिए कि ये किनके पुत्र हुए, ये सब सुनने से, भगवान के भक्तों का विषय सुनने से हृदय शुद्ध हो। तो इस तरह से ये वर्णन किया गया। और एक कारण है कि आगे आने वाले मूर्ख लोग अपने मन से किसी सिद्धांत को प्रकट करेंगे कि बंदरों से मनुष्य आया, उस सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए ये सब कहा गया कि बंदरों से नहीं, देखो किसका विवाह किससे हुआ और किससे वो आए, किससे प्रजनन हुआ, ये सब दिया गया। तो ऐसे मूर्खों को मुंह बंद करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने 5000 साल पहले ही एक भागवत में कह दिया कि ये नहीं तो वो लोग, अगर ये सब नहीं दिया होता तो कहते कि हाँ देखो बताया नहीं है कि कैसे आए, मतलब हम सब बंदरों से आए थे, और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आगे जाकर कोई ऐसा नहीं कहे। तो खैर अब वो वर्णन करने प्रारंभ करते हैं माता देवहूति के 9 पुत्रियों का। और तो माता देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम मुनि से, आकुति का विवाह हुआ रुचि मुनि से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। तो ये तीनों के विवाह मनु ने किए। तो आकुति का वर्णन करने के बाद अब देवहूति का वर्णन तो हो चुका, अब उनकी 9 पुत्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे उनकी 9 पुत्रियों का विवाह हुआ। तो उनकी पुत्री में से एक पुत्री थी कला, और कला का विवाह हुआ मरीचि ऋषि से। तो मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कला का उनसे विवाह हुआ, और फिर उनसे जो संतान हुई उसमें एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि प्रकट हुए उनकी संतान के रूप में, वो थे कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र हैं और मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ऐसे कश्यप ऋषि प्रकट हुए। फिर और एक पुत्री का वर्णन उन्होंने किया जिसका नाम था अनुसुया। ये बड़े प्रसिद्ध हुई, अत्रि मुनि से इनका विवाह हुआ। और अत्रि मुनि और अनुसुया इनके 3 पुत्र हुए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। दुर्वासा मुनि, इनके बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे आगे भागवत में। और दत्तात्रेय का भी वर्णन 11वें स्कंद में आएगा भागवतम के। और सोम जो चंद्रमा हुए, तो 3 पुत्र हुए। और जब ऐसे उन्होंने वर्णन किया कि अनुसुया का विवाह अत्रि से हुआ, और अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने अंश के रूप में इनके पुत्रों के रूप में जन्म लिया। तो विदुर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे हुआ। तो उन्होंने पूछ लिया, प्रश्न कर लिया, उन्होंने कहा कि ये तीनों कैसे आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कैसे आए, तीनों कैसे उनके पुत्र बने, ये बताइए। तो फिर मैत्रेय मुनि अनुसुया देवी अनुसुया और अत्रि मुनि की कथा कहने लगे कि जब अत्रि मुनि का विवाह हुआ तब उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की, और उनकी इच्छा थी कि वो भगवान के जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, भगवान को नहीं लेकिन भगवान के जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अत्रि मुनि ठीक तरह से जानते नहीं थे कि भगवान कौन है। उन्होंने शास्त्र पढ़े लेकिन शास्त्रों में भगवान को ठीक रूप से जान नहीं पाए, इसीलिए वो पूजा तपस्या तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कर रहे थे लेकिन जानते नहीं थे। और दूसरी ओर शुद्ध भक्त भी नहीं थे क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने की कामना नहीं की, भगवान के जैसा पुत्र पाने की कामना की। तो ये दिखलाता है कि वो शुद्ध भक्त नहीं थे, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो तो केवल भगवान को चाहता कि बस आप ही मेरे पुत्र बने। तो इसीलिए अत्रि मुनि जानते नहीं थे, और उन्होंने प्रार्थना किया कि इस ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के जो भगवान हैं, या इस ब्रह्मांड के जो नियंत्रक हैं, मैं उनको प्रार्थना, उनकी तपस्या कर रहा हूं और उनके जैसा पुत्र चाहता। तो जब उनकी बहुत कड़ी उन्होंने तपस्या की, तो एक दिन उनके सामने ब्रह्मा जी विष्णु और शिव जी तीनों प्रकट हो गए। सब वर्णन है कि जब वो आए तो सब अप्सराएं गंधर्व इत्यादि तीनों उनके साथ आए। तो अत्रि मुनि देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और अत्रि मुनि ने उनको प्रार्थना अर्पण की और फिर उनसे कहा कि मैं तो केवल भगवान की पूजा कर रहा था, कि जो भी इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं मैं उनकी पूजा कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था, लेकिन आप तीनों आ गए, आप तीनों तो गुण अवतार हैं और तीनों को देखना भी संभव नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए इतना संभव हुआ कि मैं तीनों को देख रहा हूं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि आप क्यों आ गए, मतलब अत्रि मुनि ये प्रश्न कर रहे थे, मैंने तो आपकी पूजा नहीं की, ना मैंने ब्रह्मा जी को पुकारा, ना शिव जी को पुकारा, ना विष्णु को पुकारा, तो आप क्यों आ गए? तो सीधे तो नहीं पूछ सकते, कोई वरिष्ठ आए तो उनको थोड़ी ना ऐसे पूछेंगे भाई आप क्यों आए, मैं आपकी पूजा नहीं की। तो इसलिए बड़े नम्रता से उन्होंने प्रश्न किया कि मैं तो भगवान की कर रहा था, इस सृष्टि के स्वामी की कर रहा था, फिर आप लोगों का आगमन कैसे हो गया? तो उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि हम तीनों स्वामी हैं इस ब्रह्मांड के। प्रभुपाद समझाते तात्पर्य में, क्योंकि तीनों गुण अवतार हैं, जैसे विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और शिव जी संहार करते हैं, इसलिए तीनों को स्वामी कहा गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने किसी विशेष को पुकारा नहीं स्वामी, तो हम तीनों स्वामी आ गए, अब बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? उसने कहा मैं तो एक पुत्र चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तीनों के अंश से एक एक पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। तो फिर आगे चलकर माता अनुसुईया को तीन पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से एक का नाम था सोम, दूसरे का नाम दत्तात्रेय और तीसरे का नाम दुर्वासा। दुर्वासा मुनि शिव जी के अंश हैं, सोम ब्रह्मा जी के अंश हैं और दत्तात्रेय ये विष्णु के अंश हैं। तो ऐसे तीन पुत्र उन्हें प्राप्त हुए माता अनुसुईया को। तो ये कथा उन्होंने कही और फिर आगे वो वर्णन करने लगे कि कैसे अलग अलग पुत्रियों का वर्णन किया, जैसे श्रद्धा एक का नाम था जिसका विवाह अंगीरा से हुआ और उनके पुत्र के रूप में बृहस्पति प्रकट हुए जो देवताओं के गुरु बने। पुलत्स ऋषि ने विवाह किया हविर्भू नाम की पुत्री से, नौ पुत्रियां थी उनमें से एक पुत्री हविर्भू, उनसे पुलत्स ऋषि ने विवाह किया और पुलत्स ऋषि के एक बहुत वैसे अन्य पुत्र हुए, एक पुत्र हुए विश्रवा। तो विश्रवा का नाम आपने सुना होगा। पुलत्स ऋषि के वैसे एक पुत्र और हुए जिनका नाम है अगत्स्य, अगत्स्य ऋषि का नाम हम सुन चुके हैं, और दूसरे पुत्र हुए विश्रवा। विश्रवा ने दो विवाह किए, एक तो उन्होंने विवाह किया जिससे कुबेर उत्पन्न हुए और दूसरा उन्होंने विवाह किया एक राक्षसी से जिसका नाम था केसिनी या कैकसी, और जिससे उत्पन्न हुए रावण, यस रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सब उससे उत्पन्न हुए, कैकसी या केसिनी से वो उत्पन्न हुए। तो ऐसे पुलत्स्य, तो रावण पुलत्स्य ऋषि का वंशज था, इसीलिए एक समय सहस्त्र अर्जुन ने, सहस्त्र अर्जुन एक राजा थे जिनके 1000 बाहें थी, इसीलिए उनका नाम था सहस्त्र अर्जुन। तो उन्होंने एक समय रावण को बंदी बना लिया था। रावण अपनी शक्ति में बहुत घूमता फिरता था कि कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। इनकी नगरी में आया और उस समय ये अपनी पत्नियों के साथ नदी में खेल कर रहे थे। रावण ने चुनौती दी तो इन्होंने अपनी पत्नियों को कहा जरा थोड़ा सा रुकना, मैं अभी इसको हरा कर आता हूं, जाना नहीं। तो गए और युद्ध किया और उसको हरा दिया, हरा कर बंदी बना लिया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया रावण को। अभी तक किसी ने नहीं किया था, आज तक रावण सब जगह जाता था, सारे राजाओं को चुनौती, कोई डर कर हार जाते थे, कोई युद्ध में हार जाते थे, किसी को मार देता था, लेकिन कभी रावण को हराने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहां रावण को पकड़कर बंदी बना दिया और इतना कि जेल में डाल दिया, रावण के अंदर शक्ति नहीं जेल तोड़ने की, ऐसी शक्ति थी सहस्त्र अर्जुन की। तो उस समय पुलत्स्य ऋषि, क्योंकि उनके पुत्र का पुत्र है, तो उनको थोड़ी करुणा आ गई कि अरे अरे है तो कुछ भी हो, होता है ना कि अपना लड़का कुछ भी करे ठीक है, बाकी का लड़का करे तो उसको जेल में डालना चाहिए। तो पुलत्स्य ऋषि आए, जैसे ही पुलत्स्य ऋषि आए सहस्र अर्जुन के पास, देखिए सहस्र अर्जुन एक राजा, इतने शक्तिशाली राजा, लेकिन जब उन्होंने ऋषि को देखा, प्रणाम किया, सिंहासन पर बिठाया, चरण धोए और बड़ी नम्रता से उनसे पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और पुलत्स्य ऋषि ने एक ही बात कही कि मैं मानता हूं रावण बहुत बड़ा टेररिस्ट है, आतंकवादी है, मैं मानता हूं कि थोड़ा उत्पात कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है तुम उसे छोड़ दो। बस इतने शब्द पुलत्स्य ऋषि के, कोई विरोध नहीं किया सहस्त्र अर्जुन ने, तुरंत छोड़ दिया, ठीक है आपकी इच्छा है छोड़ देता हूं रावण को, रावण को छोड़ दिया उन्होंने। तो देखिए हमारी जो सभ्यता है वो कैसे, इतने बड़े राजा, इतने शक्तिशाली राजा होते हुए भी उन्होंने कैसे मान सम्मान किया भगवान के एक भक्त, एक ब्राह्मण का। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि जीवन में सफलता हमें धन, शक्ति, बल, मान सम्मान या किसी शत्रु को हरा कर नहीं आती। जीवन में सफलता आती है जब हम भगवान के भक्तों के द्वारा उनकी पूजा करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं, तब जीवन में सफलता आती है। तो इस तरह पुलत्स्य ऋषि का भी यहाँ पर वर्णन हुआ है। और फिर आगे उन्होंने वर्णन किया अन्य पुत्रियों का, जैसे गति इत्यादि, और फिर उन्होंने वर्णन किया प्रसूति का, दक्ष, दक्ष का वर्णन करने लगे कि कैसे दक्ष के 16 पुत्री हुई, दक्ष के 16 पुत्रियां थी और उन्होंने अपनी 13 पुत्रियां धर्म को दे दी, धर्म नाम के ऋषि हुए तो उनको दे दी। तो ये वर्णन करने लगे तो उन्होंने कहा 13 पुत्रियां उन्होंने धर्म को दे दी, एक पुत्री उन्होंने अग्नि को दे दी जिसका नाम है स्वाहा। इसीलिए हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो सब करने के बाद स्वाहा, तो स्वाहा दरअसल अग्नि की पत्नी का नाम है जिसको भी एक बार रावण उठाकर ले गया था। तो खैर रावण की बात ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यही सब होगा, रावण यही सब तो करता था, यज्ञ कर रहा था। और यज्ञ करने में स्वाहा बहुत सुंदर थी, जो पुत्री थी दक्ष की बहुत सुंदर थी, तो अग्नि से विवाह हुआ था। तो यज्ञ हो रहा था, रावण उस समय आहुतियां दे रहा था, तो सब देवता आने लगे। तो उस समय देवताओं ने कहा अग्नि से, आप भी जा रहे हो, अग्नि तो आएंगी, प्रकट होंगे अग्नि, तो अपनी पत्नी को मत ले जाना क्योंकि रावण यज्ञ कर रहा है। तो अग्नि ने कहा वैदिक अनुष्ठान बिना पत्नी के होता नहीं है, ये कैसी आप बात कर रहे हैं। बोले वो तो सब ठीक है वैदिक अनुष्ठान, लेकिन जो बैठा है उसको तो देखो कम से कम। अग्नि ने, अरे कोई चिंता मत करो। तो अग्नि आए तो रावण यहां आहुति डाल रहा है, अग्नि को देखा स्वाहा, अभी पूर्ण आहुति हुई नहीं, उसने स्वाहा को पकड़ा और लेके चल दिया। और सारे बोले अरे अरे अभी पूर्ण आहुति नहीं हुई, रावण ने कहा मेरी पूर्ण आहुति हो गई बस। तो वो चल दिया। तो स्वाहा का विवाह हुआ, एक पुत्री जिनको उन्होंने अग्नि को दिया, एक पुत्री को उन्होंने पितरों से विवाहित किया, पितृलोक में चली गई, और एक पुत्री उन्होंने कहा। तो सबके उन्होंने वर्णन किया कि इनकी संतान हुई, उनकी संतान हुई, लेकिन मैत्री मुनि अंत में कहते कि एक पुत्री को उन्होंने शिव जी को दे दिया जिनका नाम था सती। तो सती को उन्होंने शिव जी से विवाह किया और उसकी कोई संतान नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई संतान? तो मैत्री मुनि कहते हैं कि उनकी संतान इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो दक्ष थे वो शिव जी से बड़ा द्वेष करते थे, और उस द्वेष के चलते ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी कम उम्र में ही सती ने अपने देह को छोड़ दिया, सती ने अपने देह को समाप्त कर दिया, इसीलिए उनके कोई संतान नहीं हुई। तो जब ऐसा सुना विदुर ने कि अरे ये क्या हुआ, ऐसा भी होता है शिवजी से भी कोई द्वेष कर सकता है, तो फिर अगले अध्याय के शुरुआत में उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि शिवजी जैसे वैष्णव से कोई द्वेष कर सकता है, तो कृपया विस्तार से बताइए। तो फिर दूसरे अध्याय से दक्ष की कथा प्रारंभ होगी।